इनके बारे में लिखा है ये ग्रस्त में रह करके भी आदमी बहुत बड़ा त्यागी बन सकता है। और वो साधु से भी ज्यादा बढ़ सकता है। इनके बारे में प्रियदा जी लिखते हैं कि भाई इनका वर्णन हम क्या करें। एक बात ये भी समझ लीजिए कि किसी भी व्यक्ति को हम अगर सोचें कि भक्तापराध बहुत भयंकर रोग है, विशाखा जी के अवतार हैं व्यास जी, उनको भी लग गया था। तो एक दिन बैठे बैठे सोच रहे कि वृंदावन रस कबीर नहीं जान पाए, इतने से भक्तापराध लग गया। और जो जुगल सरकार आती थी ध्यान में आना बंद हो गया। तो वो गए उन्होंने और चर्चा किया कि आज क्या हो गया हमको। तो उनको रसकों ने सलाह दिया, बड़े बड़े रसकों ने, हरिवंश जी आदि ने, कि आपसे कोई भक्तापराध तो नहीं हो गया है, सब रस रस खत्म हो जाता है, उसी क्षण खत्म हो जाता है। तो उन्होंने कहा हम विचार तो कर रहे थे कबीर के बारे में कि कबीर को ये रस नहीं मिला, कबीर रसिक नहीं थे। तो महात्माओं ने कहा कि यही आपको, यही भक्तापराध हो गया आपसे, बड़ा सूक्ष्म भक्तापराध है। और फिर वो जिस भक्त का अपराध हो उसी से जाकर क्षमा मांगो, ये नहीं कि हम इतना दो घंटा कीर्तन कर लेंगे और हम, उसी से जाके उस क्षमा मांगो तो जड़ मूल से नष्ट हो जाएगा। अपनी अहंता बचाने के लिए और आगे आ जाओ, थोड़ा सा बजे पीछे कर जाओ मैं। तो उन्होंने कहा कबीर तो है नहीं, क्षमा कैसे मांगे, कबीर तो बहुत पहले हुए हैं, तुलसीदास जी से भी पहले हुए हैं। तुलसीदास जी अगर अकबर के समय भये और ये भये मुगल वंश से पहले लोदी वंश में, अकबर से पहले हुमायूं से पहले बाबर, बाबर से पहले इब्राहिम लोदी, इब्राहिम लोदी से पहले सिकंदर लोदी, इतने पहले हुए हैं। तो अब कबीर से कैसे क्षमा मांगा जाए। तो बोले तुम जाओ, रसिकों ने कहा यमुना जी किनारे कबीर की स्थिति करो। जिस भक्त का अपराध किया है तो जाकर के उन्होंने कबीर की स्तुति किया। जब स्तुति पूरा किया तो उसी समय यमुना जी के बीच से देखा कबीर निकले चले आ रहे। ये सुनकर के उनकी भ्रांति मिट गई, हम अपने आप को हम रसिक मान लें ये गलत है। भगवत तत्व तो बड़ा विलक्षण है। उन्होंने यमुना जी के किनारे ये पद कहा था, कल में साचो भक्त कबीर,
साचो
कल में साचो भक्त कबीर,
जब ते हरि चरणन रति उपजी, ये जब ते हरि चरणन रति उपजी, तब से बुनियो नचीर, कलि में साजो भक्त कबीर,
असंग्रह जो हम बता रहे मुख्य विशेषता कबीर की, उस गुण का व्यास जी ने भी वर्णन किया है। कितने सुंदर शब्दों में किया है,
दियो लेत न जाचे काहू,
बिना न मांगे मिल गया वो भी नहीं लेते थे। अपना जो कुछ धान बेचा, कभी कभी बताएंगे अभी चरित्र में भूखे रहते थे,
दियो लेत न जाचे कबहू, ऐसो मन को धीर,
ऐसो मन को धीर,
हमारे यहां गैबर में मौनी बाबा हुए हैं, अभी देखने वाले अभी ब्रजवासी हैं यहां जीवित, और उनके शरीर से अग्नि प्रकट हुई थी हमने देखा, पत्ते ही घोट घोट पी लेते थे। असंग्रह में इतनी शक्ति होती है। बड़े बड़े महापुरुष हुए, उनके बहुत से चमत्कार हमने देखे हैं, और जिसका हम कभी कभी वर्णन भी कर देते हैं,
दिले न जाचे कबहू, ऐसो मन को धीर, कलि में जो भक्त कबीर। योगी जपती तपी सन्यासी,
बड़े बड़े इनके समय में योगी भी आए थे, लेकिन
मिटी न मन की पीर, कलि में साचो भक्त कबीर,
जो अभी हमने बताया कि फूल से पैदा हुए थे, अब फूल में ही समाए। जिस कन्या को गोद में पुष्प डाला था रामानंद स्वामी ने, वो पुष्प ही शिशु बना। वही बात व्यास जी भी लिखते हैं,
पांच तत्व ते
जन्म न पायो बा। ऐसे से महापुरुष इस कलयुग में रहे, पांच तत्व ते जन्म न पायो, काल की हिम्मत नहीं कबीर को छूले। आज तो बहुत देर हो गई, कल हम आपको सुनाएंगे कितनी बार काल इनके सामने आया। लेकिन काल शक्ति भगवान के भक्त को छू नहीं सकती, होना चाहिए भक्त। और यही बात यहां व्यास जी लिख रहे हैं, ये सब महापुरुष हैं, ये लोग वैसे नहीं कविता बनाते हैं, ये टुकड़ेबाजी नहीं करते हम जैसे लोग हैं। पांच तत्व से जन्म न पायो, पांच तत्व से जन्म इसलिए नहीं मिला इनका, ये चादर ओढ़ के लेट गए थे, सारा शरीर फूल बन गया, फूल से पैदा हुए, फूल में समा गए। काल न ग्रस्यो शरीर, कल में साचो भक्त कबीर, और बोले ये जुलाहा थे तो भक्ति के जुलाहा थे, भक्ति के वस्त्र बिने, व्यास भक्त को खेत जुलाहो, व्यास भक्त को खेत जुलाहो, हरि करुणा मैं नीर, कली में साचो भक्त कबीर, मन ऐसा निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। अगर निर्मल हो जाए मन तो ये बात प्रभु बोले, प्रभु भक्तों की प्रशंसा करते हैं ना, प्रकट भय कबीरदास जी जमुना में से निकले और उनका यश भगवान गा रहे हैं, प्रभु उनके पीछे पीछे आ रहे हैं, ये हम आपको कल बताएंगे। अगर भूल जाए तो याद दिला देना, बड़ा रोमांचकारी चरित्र है। तो वो जब प्रकट हुए यमुना जी से तो ठाकुर जी बोले, मन ऐसा निर्मल भया जैसे गंगा नी। पाछे पाछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। बोले भक्त तो भगवान को भजता है, अब भगवान भक्त को भजन करते हैं। ये भगवान ने दासवंचाध्याय में स्वयं कहा था, हे देवियों मैं कहीं गया नहीं था, मैं तो तुम्हारा एकांत में बैठ के भजन कर रहा था। गोपियां बोली, अरे हम तो दुनिया भर में ढूंढे आई आपको, यमुना जी किनारे गई, वहां ढूंढा वहां ढूंढा। बोले मैं कहीं नहीं गया था। बोले झूठ बोलते हो? बोले नहीं। एवं मदर्थो छिदलोक वेद स्वानामिवो मई अनुवृत्त बला। ये भगवान की वाणी है दशम स्कंध में 32वें अध्याय में 21वां श्लोक है। बोले मैं कहीं गया नहीं था, हे देवियों मैं तो तुम्हारा भजन कर रहा था। तुम हमें गा रही थी कृष्ण कृष्ण, और मैं तुम्हारा नाम लेके माला फेर रहा था, सबका अलग अलग नाम का। एवं मगर धोच्छित लोग। बोले क्यों? बोले तुमने हमारे लिए सब कुछ छोड़ दिया, तो हमने भी सोचा कि हम भी थोड़ा एकांत में भजन करके देखें। एकांत में चले गए तुम्हारा भजन करने के लिए। एवं मगर धोच्छित लोक वेद, तुमने हमारे लिए सब लोक वेद छोड़ा था। स्वानामी वो मई अनुवृत्त बला, तो मैंने भी सोचा मया परोक्षम भजता तिरोहितम, तिरोहित में छिप करके भजन कर रहा था। बोले छिपे क्यों? बोले भजन किसी के सामने थोड़ी क्या किया जाता है कि हम तुमसे कहें कि हम तुम्हारे लिए भजन कर रहे हैं। भजन तो भाई पीछे से होता है, चापलूस आदमी सामने करता है, जय हो राजी शेठ जी, आप तो आप इस समान दाता तो कर्ण भी नहीं हुआ, शिवी भी नहीं भे। अब सेठ जी ने 500 रुपए तो भजन पीछे किया जाता है। मया परोक्षम भजता तिरोहितम मा सुतुम मारहत तत्प्रियम प्रिया। तो तुम हमारे में दोष मत देखो, मैं तो तुम्हारा भक्त हूं, तुम्हारा भजन कर रहा, मैं तुमको छोड़ के नहीं गया, मैं तो तुम्हारा भजन कर रहा था। तो गोपियां जब कुछ नहीं बोली तो ठाकुर जी समझ गए कुछ दाल में काला है क्या, हमारी बात पे विश्वास नहीं कर रही क्या, और भगवान तो सच बोलते हैं। तो उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है। इसके नीचे वो बोले कि चलो अगर तुम ये नहीं मानती हो हम तुम्हारा भजन कर रहे हैं, तो एक काम करो, हम तुम्हारे ऋणी हैं, हम तुम्हारे प्रेम का ऋण नहीं उतार सकते, और हमको क्षमा कर दो। न पारे हम निर्वध्य संयुजाम स्वसाधु कृत्यम विबुधायुषा पिवा यामा भजन दुर्जर्गे श्रृंखला संवृष्ट तदवह प्रतियातु साधुना। तुम हमको ऊर्ण कर दो, ये कई आचार्यों ने लिखा है, ये अपनी ओर से बात नहीं कहते हैं, अको प्रमाण बता दें कि जब गोपियों ने से ठाकुर जी ने कहा कि हमको तुम ऊर्ण कर दो, तो गोपियों ने कहा ठीक है, वो शांत नहीं और जब ऊर्ण कर दिया अर्थात, तो श्याम सुंदर बोले तुमने हमको ऊर्ण किया है, ऋण से मुक्त किया है, तो मैं भी कृतज्ञ हूं। हमने तुमसे मान लो 10,000 रुपये लिया और तुमने छोड़ दिया कि जाओ तुम हमको रुपया नहीं वापस कर सकते हो तो जाओ हम तुमको छोड़ देते हैं। तो ऐसी अवस्था में क्या होता है, ऋण जो नहीं चुका पाया और उन्होंने हमको ऋण छोड़ दिया तो हमको उसका यश गाना चाहिए। कृतज्ञता कारण ये शास्त्र कहता है कि हम उसका यश गावें। और यशो नहीं गाते हैं कृतज्ञ है तो फिर तो एकदम ही नालायक की बात है, वो तो फिर पशुता है और नीचता है। तो बोले उस ऋण को चुकाने के लिए ही जब गोपियों के ऋण उतार नहीं पाए इसलिए कृष्ण कृष्ण चैतन्य महाप्रभु बने। इसका प्रमाण लीजिए, ये हम नहीं कह रहे हैं कहीं कोई मुकदमा चला दे मैं पर, ये भक्तमार में लिखा है कि चैतन्य महाप्रभु क्यों, कृष्ण चैतन्य क्यों बने। गोपिन के अनुराग आगे आप हारे श्याम, देख लो कितने प्रेमी भगवान। उनके प्रेम को चुका नहीं पाए, बोले हम तुम्हारे कर्जदार हैं, तो अब जो कर्जदार है तो जीवन भर उसका नाम गाएगा। तो इसीलिए गोपियों के प्रेम को नहीं चुका पाए, हार गए तो वो चैतन्य बन गए। गोपिन के अनुराग आगे आप हारे श्याम, जानो यह लाल रंग कैसे आवे तन में, सोचने लग गए ये गोपियों का अनुराग हमारे हृदय में कैसे आवे। इसीलिए तो उस भाव को लेकर के आए, राधिका भाव या गोपी भाव लेकर के। हम ये जो इनके हृदय में प्रेम है जो आनंद देती है वो हम भी चाखना चाहते हैं। ये कृष्ण सोच रहे हैं, अच्छा फोटो खिंचवा लें। नहीं इससे कोई बात नहीं, काली का आवेश आ गया है। गोपिन के अनुराग आगे आप हारे श्याम, जानो यह लाल रंग कैसे आवे तन में, अरे भाई यहां सुन कथा सुन लो। श्याम सुंदर सोच रहे हैं कि ये अनुराग लाल रंग हमारे हृदय में कैसे आवे। बोले लाल रंग तो भाई सफेद धोती पर चढ़ता है और हमारा तो काला रंग है, अब क्या किया जाए। अब काले रंग की धोती पर लाल रंग डुबो तो कैसा लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा। तो श्याम सुंदर बोले हम इसमें भी फेल हो गए क्योंकि हम काले हैं। ये तो सब गौर तनी नख शिख बनी ठनी, ये तो सब गोरी है और मैं सांवला हूं। खुल्यो यो सुरंग रंग अंग रंग बन में, अब श्याम रंग में गोपियों का प्रेम उन्होंने खींचा, लेकिन काले रंग होने के कारण लड़ाई खिली नहीं, श्याम सुंदर में वो प्रेम खेल नहीं पाया। श्याम ताई माझ सो ललाई हु समाई जोई, ताते मेरे जान फिर आई है मन
में।
तो कृष्ण सोचे कि मैं तो काला हूँ, अब काले में ये गोपियों का प्रेम का लाल रंग खिला नहीं, तो ये काला रंग छोड़ दो। तब वो गोपियों का भाव वो हमारे हृदय में आएगा और तब खेलेगा, इससे पहले काला रंग हटाओ। इसीलिए जशोमती सुत सोई शची सुत गौरव है, गोरे गोरे भय, बोले ऐसा गोरे बनेंगे हम, ऐसा गोरा रंग लेंगे कि एकदम खिल जाए लाल रंग, इसलिए उनको गौरांग कहा गया, इतने ज्यादा गोरे से, इसीलिए गोरे बने। अब गोपियों का भाव खिलेगा हमारे में, कृष्ण रूप में नहीं खिला था। जसुमती सोई शचु सिद्ध गौर भय, बोले फिर जब गोरे बन गए तब वो प्रेम ऐसा उमड़ा जैसा कृष्ण बनने पे नहीं उमड़ा था। बोले क्यों? बोले कृष्ण बनने के बाद तो मथुरा गए, द्वारका गए, द्वारकाधीश भी बने, बड़े बड़े स्वांग किया, और जब गौरांग बन गए तो क्या किया? बस नए नए नेह चोज नाचे निज गन में, नए 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 नेह चोज नाचे निज गन में, ऐसा नाचते थे कि अलात चक्र की तरह। अलात चक्र कहते हैं कि आपने देखा होगा नट लोग एक वो आग लगा देते हैं गोला में और डोर से बांध करके उसको नचाते हैं, तो चारों तरफ वही गोला ऐसा लगता है कि चारों ओर आग लग गई है, इतने तीव्र गति से नाचते थे। फिर कोई वही नहीं रही कि अब हम द्वारकाधीश हैं कि मथुराधीश हैं, और कोई मर्यादा नहीं रही, दिन रात नाचे, दिन रात गाए, दिन रात प्रेम का रंग खिल गया। तो वो ये हमने इसलिए ये बात बताया कि जो उन्होंने कहा था श्याम सुंदर ने, कि मैं कबीर के पीछे पीछे घूमता हूं, ये जब यमुना से प्रकट भए तो ठाकुर जी ने आवाज दिया, भगवान भक्तों का भजन करते हैं, ये हमने इस प्रमाण में कहा कि गोपियों से कहा कि मैंने भजन किया, और उसको प्रियदा जी ने बताया कि गोपियों का भजन करने के लिए तो कृष्ण चैतन्य बने थे, दिन रात गोपियों का यश गाया, इन्होंने जो ऋण हमारे ऊपर लाद दिया प्रेम का, ये कैसे उतरेगा? तो वैसे जब ये प्रकट भये व्यास जी के सामने कबीर, तो ठाकुर जी बोले मन ऐसा निरवल भया जैसे गंगा नीर, और पीछे पीछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। बोले देखो मैं स्वयं कबीर का भजन कर रहा हूं, कबीर तो राम 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 कहता है, मैं इसके पीछे पीछे घूमता हूं, कबीर 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 कबीर। तो कबीर को पता पड़ गया कि ठाकुर जी कह रहे हैं कि मैं कबीर कबीर रटता हूं। तो फिर उन्होंने उत्तर दिया उसका, कबीरा कबीरा क्यों कहे, कबीरा कबीरा क्यों कहे, जा यमुना के नीर, एक गोपी के प्रेम में एक गोपी के प्रेम में और बह गए कोटि कबीर। अरे मेरा यश क्यों गाते हो भाई, प्रेम तो गोपियों को था। ए कबीरा कबीरा क्यों कहे, जा यमुना के नीर, एक गोपी के प्रेम में बह गए कोटि कबीर। असंग्रह की बात रह गई, चलो क्लेश अग्नि शुभदा मोक्ष लगता कृत सुदुर्लभा सांद्रानंद विशेषात्मा पदगिरि आदि कहा है भाई, कृष्णाकर्षणी चा